तो आइए भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे श्री राधा कृष्ण के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है पंचशील श्री श्री गौर नेताय मंदिर इस्कान पंचशील में रविवार के भगवद गीता के सत्संग में। दोस्त रविवार पहले हरे कृष्ण भगवद गीता को हमने पुनः आरंभ किया था, उसका आमुख पढ़ा था और साथ में कार्तिक महीने के महत्व को देखते हुए दामोदर अष्टकम दामोदर के अष्टलोकों के ऊपर भी चर्चा की थी। तो भगवद गीता के प्रीफेस में आमुख में विशेष रूप से हमने तीन चार बातों को ध्यान में रखा था कि प्रभुपाद का भाव भगवद गीता पढ़ने के लिए क्या है। उसमें विशेष रूप से पहली बात जिसका हमने बहुत ध्यान रखने की चर्चा की थी वो ये थी कि भगवद गीता श्लोकों सहित हरेक शब्द के अर्थ के साथ समझने का प्रयास करना चाहिए। हर एक शब्द श्लोक के अंदर है उसका अर्थ, इसलिए प्रभुपाद ने बड़ा परिश्रम करके दिया है संस्कृत के श्लोक का कि आप उसके अर्थ के रस का आस्वादन कर सकें। तो भगवद गीता को उस दृष्टि से पढ़ना चाहिए कि उसके शब्दों का अर्थ आपको बड़ी सरलता से समझ में आ जाए, इसका प्रयास करना चाहिए। पहला दृष्टिकोण प्रभुपाद जी का ये था। और दूसरा दृष्टिकोण था कि ये भगवद गीता के अंदर भगवान का उद्देश्य क्या है, मिशन भगवान श्री कृष्ण की मिशन क्या है, और उसके लिए जो श्लोक था नवे अध्याय का अंतिम श्लोक मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, ये भगवत गीता का मिशन है। इसका अर्थ ये है कि भगवत गीता हम जब अध्ययन करते हैं पढ़ते हैं तो हमको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमको कृष्ण में मन लगाना है, हमको भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना है, हमको भगवान को नमस्कार करना है और भगवान की पूजा करनी है। तो तो ये चार चीजें हमारे भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य होनी चाहिए। हम क्यों भगवत गीता पढ़ते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं। हम क्यों भगवत गीता पढ़ते हैं? मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं। क्यों हम भगवत गीता पढ़ते हैं? कुछ संसार का लाभ नहीं। क्यों हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण में मन लगे, भगवान की भक्त बने, भगवान की शुद्ध प्रेममयी भक्ति कर सके, भगवान को नमस्कार करें, भगवान की पूजा करें। ऐसे करने से होगा क्या? हमारा मन भगवान में लगेगा और हम भगवान को ही पालेंगे तो फिर संसार की और चीज पाने की आवश्यकता रह नहीं जाएगी। तो भगवत गीता की मिशन स्टेटमेंट, भगवत गीता के भगवान के कहने का उद्देश्य, ये चार सूत्री प्रोग्राम भगवत गीता का है। तो ये आंखों के सामने रख के फिर भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और फिर प्रभुपाद इतना सारा परिश्रम से लिखने के बाद भी अपना जो श्रेय है भगवत गीता के लिखने का, वो अपने गुरु और परंपरा को देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की गीता उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा समझी हुई, मैं तो उनका दास, उनकी सेवा का कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई विशेष योगदान नहीं है। तो इसका अर्थ है कि भगवत गीता समझने वाला अपने आप को निम्रता पूर्वक जीवन में बहुत निम्र बनाए रखेगा तो भगवत गीता अपने आप प्रकाशित होगी। भगवत गीता के गूढ़ रहस्य तभी हमारे हृदय में स्फुरित होंगे जब हमारे अंदर निम्रता का भाव होगा। बड़े विद्वान का मन में भाव आ जाए अथवा हम बहुत बड़ा अब समझ गए हैं भगवत गीता, तो भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। तो निम्रता से भगवत गीता के निकट जाके समझने का प्रयास करना, और जो भी समझ में आए वो गुरुजनों की कृपा मानना, भगवान की कृपा मानना, ये भगवत गीता को समझने की शैली है। और केंद्र बिंदु क्या है भगवत गीता का, ये तीसरी बात विशेष रूप से हमने अमुख में पढ़ी थी। केंद्र बिंदु भगवत गीता का है अपने इंद्रियों को तृप्त करने के प्रयास को त्याग कर श्री कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। अपने इंद्रियों को तृप्त करने के प्रयास से अनादि काल से कई जन्मों से भटकते हुए सुख को न पाकर दुख को ही ग्रहण करते आ रहे हैं। भगवत गीता के अध्ययन करने से उसकी जो मुख्य केंद्र बिंदु है, the central point है भगवत गीता की, वो ये है, अब हमको अपनी इंद्रियों की तृप्ति को छोड़कर, त्याग कर, भगवान की इंद्रिय तृप्ति का जीवन का लक्ष्य, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की इंद्रिय तृप्ति, ऋषिकेश भगवान कैसे प्रसन्न हो, ये करने का संकल्प लेना चाहिए। तो ये है भगवत गीता का केंद्र बिंदु। अपनी इंद्रिय तृप्ति से कई जन्मों से हम इस संसार के अंदर बार बार जन्म ले रहे हैं और बार बार इस दुनिया से जा रहे हैं, अब इसको समाप्त करके सुख का साधन भगवान की सेवा में अगर हम ढूंढ लेंगे, भगवान की प्रसन्नता में ढूंढ लेंगे, तो हम सुखी हो सकेंगे। और अंतिम प्रभुपाद जी का भाव भगवत गीता के अंदर बड़ी आशा है, बड़ी उनको उम्मीद है कि एक भी कोई व्यक्ति इस भगवत गीता के द्वारा शुद्ध भक्त बन गया तो मैं अपना सारा परिश्रम को सार्थक समझूंगा। तो ये भी ऐसे नहीं कि हम प्रचार करें तो हजार लाखों लोगों को भक्त बनाएंगे, लोगों को ये भाव, प्रभुपाद ने ये लिखते समय क्यों उनके मन में ये भाव आया, तो प्रभुपाद जी के मन में उस वक्त चेतना महाप्रभु की ये शिक्षा आई, न धनम न जन्म न सुंदरम, मुझे ज्यादा जनता नहीं चाहिए जो कहे कि गुरु महाराज की पूजा करनी है और नारे लगाए, वो होंगे तो मेरे को अहंकार आ जाएगा। एक भी व्यक्ति अगर शुद्ध भक्ति से बन जाएगा तो मैं अपना सारा मेहनत को, हमारी सारा जो परिश्रम किया इसको सार्थक मानूंगा। तो हमें भी जीवन भर प्रचार करने के पीछे ये उद्देश्य रखना चाहिए, हम सबके पास जाएं कि हाथ जोड़ के भगवान का संदेश सुनाएंगे, लेकिन पूरे जीवन के परिश्रम से अगर एक भी कोई शुद्ध भक्त भगवान का बन गया तो भी हम अपने जन्म के प्रयास को, प्रचार को सफल मानेंगे। तो ये आशा भी जीवन में बनी रहे तो अच्छा है। ये आमुख के अंदर हमने चार पांच चीजें लास्ट टाइम पढ़ी थी। हरे कृष्णा। ठीक है। तो ये भगवद गीता पढ़ने के लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करने के लिए ये चार पांच चीजें लिख के रख देनी चाहिए। जब पढ़ने बैठे तो हमको मालूम होना चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर हमारे पढ़ना सार्थक हो जाएगा। अब इसके बाद भगवद गीता का वो इंट्रोडक्शन शुरू होता है। क्या लिखा है इंट्रोडक्शन, क्या लिखा है हिंदी में? भूमिका में हमने ये श्लोक पढ़े थे, मुझको मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण का मतलब प्रार्थना करते हैं अपने गुरुजनों को, अपने इष्ट को, जैसे कि हमारे इस कार्य में कोई बाधा न पड़े, हम इसको पूर्ण कर सके अपने प्रयास को, तो इसके लिए मंगलाचरण है। तो आइए हम सब साथ मिलके ये पढ़ते हैं। आप अपना किताब है खोलिए। ओम अज्ञान तिमरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीव साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणालली शिवशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गौपेश गौपिका कांता राधकांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि। वांछाकल्पतृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ये हम सब ने साथ मिलके उच्चारण किया, ये हो गया इसका पाठ करना। लेकिन जब पाठ करें तो हमको इसके शब्दों का अगर अर्थ आएगा तो वो चीज दिखेगी सामने, वो चीज सामने दिखेगी प्रार्थना करते समय, तो प्रार्थना बहुत व्यक्तिगत हो जाएगी। तो जब हम ये उच्चारण करें तो हमको इसका अर्थ आना चाहिए। पहले हम लास्ट टाइम मैंने खबर में इसके थोड़े अर्थ के ऊपर हमने चर्चा की थी। ओम अज्ञान तिमरांधस्य, मैं अज्ञानता, तिमर कहते हैं अंधकार को, मैं अज्ञानता के अंधेरे में इस संसार में प्रकट हुआ, पैदा हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मेरे गुरु ने कृपा करके ज्ञान का प्रकाश दिया जिससे मैं इस जगत में अपने आप को और जगत को समझने के योग्य बना, तो इस गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। इसका अर्थ ये, जब ये हम उच्चारण करें तो अपने गुरु जन अथवा गुरु जनों को सामने रखे, मानो ध्यान में आए कि मेरे गुरु जी प्रभुपाद जी की कृपा से मैं उनका पुस्तक पढ़ रहा हूँ, गोपाल कृष्ण महाराज की कृपा से मैं भक्ति में आया हूँ, अथवा जो भी जिस महात्मा की कृपा से जिस साधु के संग से आपके मन में भगवत भक्ति आई है उसका सुमरण आ जाना चाहिए। तो ये जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसका चेहरा आपके सामने आना चाहिए कि मैं उस व्यक्ति को प्रणाम कर रहा हूं जिसने मेरे को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर मेरे को भगवान के चरणों के रास्ते पे लगाया है। तो ये कहने के समय वो सामने आना चाहिए, नहीं तो ये इम्पर्सनल हो जाएगा, नहीं तो ये कुछ ऐसे बोलने का तो टेप बोलता है, आप बोलते हैं इसमें कोई अंतर नहीं है, आपके अंदर ये भाव साथ में होना चाहिए। उसके पास दूसरा श्लोक है, इसमें रूप गोस्वामी पाद को प्रणाम किया गया है। रूप गोस्वामी पाद को प्रणाम इसलिए किया गया है कि हम जितने भी भक्त हरे कृष्ण संस्था के भक्त हैं अथवा गौड़ीय वैष्णव जितने भी हैं, वैष्णव संप्रदाय चेतना महाप्रभु से शुरू हुए जितने भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के भक्त हैं, उन सबको कहते हैं रूप अनुगा, उनके लिए नाम है रूप अनुगा। अनुगा कहते हैं अनुगामी, उसके पीछे चलने वाला। किसके पीछे चलने वाला? रूप गोस्वामी के शिक्षाओं के आधार पे चलने वाला। तो रूप गोस्वामी की विशेष रूप से भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेश अमृत, ऐसे दो शास्त्र है जिसको प्रभुपाद ने कहा ये भक्तों के लिए लॉ बुक है, उनके जीवन का इसके ऊपर आधारित होना चाहिए। तो उस रूप गोस्वामी की इस श्लोक में कहा गया है, जिसने श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मन का क्या अभीष्ट है, मन में उनके क्या है उसको जान लिया था, और उनके मन की इच्छा को पूरे विश्व में स्थापित किया है, इसलिए ऐसे महात्मा को हम प्रणाम करते हैं। तो ये विशेष बात ये हो गई, शिष्य कौन सा अच्छा? जो गुरु की इच्छा को बगैर कहे समझ जाए और पूरा कर ले। बेटा भी वो अच्छा है जो बाप के कहने से पहले उसके मन के भाव को समझ के और वो कार्य संपन्न कर ले, उसको पहले नंबर का आज्ञाकारी पुत्र माना जाता है। भीष्म पिता में ऐसा बेटा था जिसको पिता को चिंतित देखकर पिता से नहीं पूछा, सारथी से पूछा कहां से पिताजी आ रहे हैं, चिंतित क्यों दिख रहे हैं? कि हम तो गए थे नदी के किनारे पे, एक वो नाव चलाने वाला मच्छी पकड़ता है उसके पास आपके पिता मिलने गए, उसके पास उनका ये हाल है। तो भीष्म पितामह उसके पास चले गए और उससे जाके पूछा कि हमारे पिताजी आपके पास क्यों आए थे? उसने बोला आए थे कि मेरी बेटी से विवाह करना चाह रहे थे। बोला फिर आपने क्या कहा? बोला मैंने कहा कि मेरी बेटी आपको इसलिए विवाह के नहीं दे सकता हूं कि मेरी बेटी तो रानी तो बनेगी लेकिन उसका बेटा तो राजा नहीं बन सकता है, क्योंकि आप उसके बड़े बेटे पहले बैठे हुए हो, तो इसलिए मैंने विवाह करने से मना कर दिया। तो बोला फिर मैं आपको कहता हूं कि मैं राज नहीं लूंगा, मैं वचन करता हूं आपको। बोला आप राज नहीं लेंगे कोई बात नहीं, आप कल शादी करेंगे, आपका बेटा फिर कहेगा कि मैं राज करूंगा, मेरा अधिकार है, मैं बड़ा बेटे, मैं बाप भाई का लड़का हूं। तो तब भीष्म देव ने कहा आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, आप तो शादी कराओगे तुम्हारी बच्ची की, तुम्हारी लड़की की मेरे पिता से। तो सत्यवती उसका नाम था, मत्स्य गंधा उसको कहते थे, पहले उसमें से मच्छी की बदबू आया करती थी लेकिन व्यास देव की कृपा से वो मत्स्य गंधा जो है वो सत्यवती के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुई और शांतनु के साथ उसका विवाह हुआ भीष्म पितामह के। तो भीष्म पितामह जैसा बेटे को कहते, पितृ भक्त इस विश्व के अंदर भीष्म जैसा कोई नहीं हुआ है, जिसने पिता की बगैर कहे उसके मन के अभिष्ट को जाना और उसको पूरा कर दिए। कहने के बाद करे उसको आज्ञाकारी कहते हैं, कहने के बाद भी नहीं करे वो तो बेकार मूर्ख है। तो चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान चैतन्य महाप्रभु के मन के भावों को जाना था। और एक श्लोक ऐसा था जो चैतन्य महाप्रभु ने उच्चारण किया था, श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने साधारण एक कोई संसार में प्रेम करने वाला लड़की और लड़का हो वो जैसे कोई गाना गाए ऐसा श्लोक था। और कह रहे थे महाप्रभु मैं भी वही, मेरी प्रेमिका भी वही, अथवा मैं भी वही, मेरा प्रेमी भी वही, लेकिन आज फिर हम जहां मिले हैं हमको वो सुख और आनंद नहीं मिल रहा है जो पहले हम एक बार मिले थे। तो सब लोगों ने कहा क्या कह रहे हैं महाप्रभु, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन रूप गोस्वामी उस वक्त में जगन्नाथपुरी में गए हुए थे, वृंदावन से लौट के जगन्नाथपुरी गए थे, हरिदास ठाकुर के साथ रहते थे समुद्र के किनारे। रूप गोस्वामी ने एक कागज के ऊपर कुछ श्लोक लिखा और वो झोपड़ी के ऊपर रख दिया और स्वयं नहाने चले गए। तो महाप्रभु पीछे गए, रोज जाते थे वहां, श्लोक देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वरूप दामोदर को बोला देखो ये किसने लिखा है, ये तो मेरे मन के भाव को जान गया है। रूप गोस्वामी आया तो पूछा ये आपने लिखा है? तो उनको थोड़ा सा शर्म आ रही थी कि मैं गुरुजनों के सामने कैसे कहूं कि मैंने लिखा है। बोला इसका क्या, आपने क्या लिखा है, इसका भाव क्या है? तब उन्होंने कहा, उनके कहने के ऊपर स्वरूप दामोदर आदि के कहा कि आपने जो कल ये कहा था मैं वही, मेरा प्रेमी भी वही, फिर एक बार पुनः मिले हैं लेकिन इस मिलने में वो आनंद नहीं, वो रस नहीं, वो प्रेम नहीं जो हम पहले मिले थे। मैंने इसको समझा कि आप राधा रानी के भाव में कृष्ण से मिलने की कुरुक्षेत्र की चर्चा कर रहे हो। जब सूर्य ग्रहण पे कृष्ण द्वारका से अपने सारे समूह के साथ रानियों के साथ कुरुक्षेत्र आए थे तब राधा और कृष्ण का मिलन हुआ था। लेकिन राधा कहती है वही कृष्ण है, वही मैं हूँ, फिर हम आपस में मिले हैं, लेकिन आज मिलने में वो आनंद नहीं है जो जमुना के किनारे पे हम पूर्णमास की रात को कदम के पेड़ के नीचे मिलते थे। चेतन महाप्रभु के मेरे मन के भाव को आपने कैसे, मैं तो एक साधारण बात कही थी। तो तब से सब भक्तों ने कहा कि आपकी कृपा से आपके मन की इच्छा कुछ इतना महाप्रभु रूप गोस्वामी जानते हैं। तब से ये श्लोक रूप गोस्वामी की प्रार्थना का है कि जिसने अपने गुरु के मन के अभीष्ट को जाना, इच्छा को जाना और विवरे विश्व में उसको स्थापित किया तो उसको हम प्रणाम करते हैं। इसलिए प्रणाम करते हैं कि हम उसके अनुगामी हैं, हम उनके अनुचर हैं, उनके पीछे चलने वाले हैं। उसके बाद एक इस श्लोक के अंदर बहुत लंबा श्लोक है, इसके अंदर प्रणाम किया गया अपने गुरु को, सब वैष्णवजनों को जिनके संग में हम बैठ के भगवान का भक्ति भजन करते हैं, और गुरु बहुवचन में गुरुन, बहुवचन में गुरु है, उन सब को हम प्रणाम करते हैं। ये जब प्रणाम आप पढ़ें तो आपके मन में ऐसे आना चाहिए, पहले आपको कौन भक्ति में लाया उसका नाम दिल में आम में आना चाहिए, ये तो फलाना व्यक्ति आया था, एक भगवद गीता हमको दी थी तो हम उसको भी प्रणाम करते। ये आपको स्मृति बनी रहनी चाहिए ऐसे लोगों की जिन्होंने आपके जीवन में भगवान की भक्ति लाया है, उन सब का नाम लेके भाव। कभी कभी भाव, हम जब एक श्लोक भागवत में समा पढ़ते हैं ना, नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, तो भागवत सेवा जब शब्द आप उच्चारण करें तो कम से कम उन लोगों को जिनसे आपके जीवन में भक्ति आई है वो भागवत पुरुषों का नाम दिमाग में आना चाहिए। फलाने महाराज की कृपा से मेरे मन में भगवान की भक्ति आई, मैं उसको वो ऐसे भागवत का मैं सेवन करूं। ऐसे आपके मन में कुछ व्यक्ति विशेष जिन्होंने आपके जीवन में भगवान की भक्ति निकट लाए हैं उनका स्मरण आना चाहिए। नहीं तो मैकेनिकल कहने से कोई लाभ विशेष नहीं है, ये तो टैप की तरह फिर बच गया। तो हम सब गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, तो कम से कम हम अपने जीवन में मानो मैं 5-7 जिन साधुओं के संग में, भक्तों के संग में रहा हूं, उनका नाम लेके मैं ये आपको बता इसलिए रहा हूं कि सभा जब वांचा कल्पत्रु कहते हैं ना भाई, वांचा कल्पत्रु हम सब वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम ऐसे कह के करना नहीं है। हम तो 2 मिनट लगाते हैं नाम लेके एक एक का, ये वैष्णव की कृपा, ये वैष्णव फलाना स्वामी, फलाना स्वामी, फलाना भक्त नाम लेके 10-20-50 जिनके कारण से हमारे जीवन में भक्ति बढ़ी है अथवा मेरे हमको भक्ति में लगाने का जिन्होंने प्रयास किया उन सबको हम प्रणाम करते हैं, ऐसे मन से कहना चाहिए तो हुआ आपका व्यक्तिगत प्रणाम, नहीं तो मैकेनिकल प्रणाम हो गया ऐसे हमने प्रणाम कर दिया। लेकिन आपके जीवन में जिसने आपके ऊपर थोड़ा भी भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास किया है उस व्यक्ति का स्मरण करना अति आवश्यक है। तो ये प्रणाम करने समय ये मन में भाव आना चाहिए, वंदे हम श्री गुरु श्री युत पदगम श्री गुरु वैष्णव, फिर 6 गोस्वामियों को प्रणाम किया गया है इस श्लोक में, 6 गोस्वामियों को प्रणाम किया है। जो 6 गोस्वामी जो 6 गोस्वामी में 5 तो चेतना महाप्रभु के निज शिष्य थे, डायरेक्ट शिष्य थे, मतलब भगवान के जैसे कृष्ण का अर्जुन साक्षात शिष्य है जिसको भगवत गीता भगवान ने स्वयं सिखाई है, ऐसे वही भगवान श्री कृष्ण जब चेतना महाप्रभु के रूप में आए तो इन 5 गोस्वामियों को स्वयं अपनी शिक्षा दी, और 6ठा गोस्वामी केवल महाप्रभु को देखा था लेकिन उन्होंने गुरु किया था अपने एक और गोस्वामी को। तो 5 जो महाप्रभु के साक्षात शिष्य है निज, पहला है रूप गोस्वामी, फिर उसका बड़ा भाई अग्रज सनातन गोस्वामी, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 5ों तो शिष्य है महाप्रभु के डायरेक्ट। 6ठा गोस्वामी जीव गोस्वामी, जो भतीजा था रूप और सनातन का, सनातन के पास गया लेकिन सनातन का रूप गोस्वामी से दीक्षा ले लो, उन्होंने रूप गोस्वामी के पास भेजा था। तो ये 6 गोस्वामी को प्रणाम है, छह गोस्वामी के बाद चैतन्य महाप्रभु का नाम लेके उसको प्रणाम करते हैं। उसके साथ अवधूत लिखा है, वो नित्यानंद प्रभु को संबोधन है। चैतन्य क्या लिखा है? सावधूतम। स मतलब साथ, किसके साथ? चैतन्य के साथ। किसको? अवधूत को। जो नित्यानंद प्रभु को अवधूत कहते हैं। ये सामने आपके जो ऊपर दो ठाकुर जी विराजमान है, जो मेरी तरफ है वो चैतन्य महाप्रभु है, और जो उस तरफ है वो नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद को अवधूत कहते हैं। तो नित्यानंद इन दोनों को, और इनके साथ उनके पार्षद गण, इसका मतलब अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित श्रीवास आदि सबको प्रणाम। तो गुरुजनों को, वैष्णव को प्रणाम किया, छह गोस्वामी को प्रणाम किया, फिर पांच तत्व को प्रणाम किया। अब राधा कृष्ण को, पहले राधा को, फिर कृष्ण को, और फिर दो विशेष शक्तियों का नाम लेके प्रणाम कर रहे हैं, ललिता और विशाखा को। ललिता सीधे हाथ पे कृष्ण की तरफ होती है और विशाखा राधिका की तरफ खड़ी होती है। जब वो दो सखियां साइड में खड़ी होती हैं तो राधा के इस तरफ विशाखा होती है, कृष्ण के राइट साइड पे ललिता होती है। तो ये दृश्य देखने में आना चाहिए, इसको देखकर प्रणाम करना चाहिए। जिस भी ठाकुर जी का आपने दर्शन किया, वृंदावन में ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर के साथ खड़ी है, तो उस दृष्टि से उसका दर्शन करके प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम है डायरेक्ट। हे कृष्ण करुणा सिंधु। कृष्ण कैसा है? बोला करुणा सागर है। करुणा सागर इसलिए है कि हम तो दीन है, हीन है, वो तो दयालु है, कृपालु है, उनके हृदय में बहुत करुणा है, और दीन बंधु है, तो इसका मतलब हम बहुत दीन है। ये प्रणाम करते समय अपने आप को समझना चाहिए, मैं दीनहीन हूं, मैं बहुत नीचे गिरा हुआ, बहुत छोटा व्यक्ति हूं। दीन बंधु, आप तो बंधु, दीनों के बंधु है, तो मैं दीन हूं। आप करुणा के सागर हैं और मैं पात्र हूं कर्मा, आप कृपा मेरे ऊपर कीजिए। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। आप तो पूरे जगत के पति हो, आप तो सारे जगत का पालन पोषण करते हो, तो मैं भी जगत में एक हूं और मैं आपके चरणों में आके बैठा हूं। हाँ जगत पति, कैसे आप जगत के पति हो? सारे जगत का पालन पोषण करते हो, लेकिन विशेष रूप से गोपीश गोपी का कांता, जो गोपियों के तो मालिक हो, गोपीश गोपी के ईश हो। ईश का मतलब मालिक, वो तो आपको ही अपना प्राणनाथ मानते हैं। गोपी का कांता, और गोपियों को बहुत प्रेम करने वाले हो, गोपियां आपसे बहुत, कांता का मतलब प्रेमी, और कौन सी गोपी से बहुत विशेष प्रेम? राधा कांत, राधा हम आपको नमस्कार करते हैं। इसका भाव क्या है? भाव ये है कि आप तो जगत सारे का रोटी पानी तो सबको देते हैं, हवा पानी सबको दे रहे हैं। हवा तो भगवान ने किसी की बंद नहीं की है, भक्त नहीं है उसकी भी बंद नहीं की, चोर की भी बंद नहीं की है। पानी हवा रो खाना पीना जगत पतियों सबको दे रहे हो, लेकिन हम तो दीन हैं, हम तो आपकी करुणा को ऐसे चाहते हैं जैसे आप वो गोपियों को आपने अपना मान लिया था, ऐसे हमको भी उनके चरणों के दास मानते हुए अपनी सेवा में ले लीजिए। हम आपको प्रणाम करते हैं कि हम आपकी करुणा के पात्र तो नहीं है, फिर भी ये आकांक्षा करते हैं, ये चाहते हैं कि आप हमारे दीनों के ऊपर कृपा कीजिए। पति तपावन हेतु तव अवतार, मौसम पति तन पाए बे कोई आर। मैं तो आपका आपका अवतार हुआ है पतितों का उद्धार करने के लिए ना, तो मेरे जैसा पति तो आपको मिलेगा ही नहीं। अब तो मैं सबसे ज्यादा पति, तो पहले मेरा उद्धार कीजिए ना। तो इस मंत्र कहते समय आपके अंदर थोड़ा हीन भाव आना चाहिए कि हम इस दुनिया में, पहले तो इस दुनिया में पैदा हुए हैं, इसका मतलब कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, दुख में के सागर में गिरे हुए हैं। तो अपने आप को दीनहीन बोलकर भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। मानो भगवान को प्रार्थना नहीं सुनते हैं, तो फिर राधा रानी को प्रार्थना की गई है। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी। आपका आप कैसी हैं राधा? बोला तप्त कंचन, कंचन कहते हैं सोने को, तप्ता मतलब पिघला हुआ, पिघले हुए सोने का जैसा चमकीला रंग होता है सुनहरी, ऐसा आपका रूप है। तप्त कंचन गौरंगी, गोरा आपका अंग है पूरा, हर एक अंग गोरा है। तप्त कंचन गौरंगी राधे, आप राधा आपका नाम है, आप भगवान कृष्ण की आराधना करती हैं इसलिए राधा हैं। वृंदावन ईश्वरी, वृंदावन की आप मालिक हो। वृंदावन की आप मालिक हो, वृष भानु सुते आप वृष भानु की बेटी हैं, तो भानु सुते प्रणमामि, में हम आपको प्रणाम करते। यहां कुछ नहीं कहते हैं कि आप दीन बंधु या नहीं, आप तो कोई भी आपको प्रणाम एक बार करेगा तो आप कृष्ण भगवान की भक्ति दे दोगी, इसलिए हम राधा को इस भाव से प्रणाम करते हैं। उसके रूप के रंग को जानते हैं, उसका संबंध जानते हैं कि वृंदावन से संबंध है उनका, उनका वृष भानु से संबंध है, तो उन राधा रानी को हम प्रणाम करते हैं। और उसके बाद सब वैष्णव गण को प्रणाम करते हैं, भगवान की कृपा, कृष्ण की कृपा के लिए राधा रानी को प्रार्थना करनी पड़ेगी, राधा रानी की कृपा के लिए वैष्णव जनों को प्रणाम करना पड़ेगा, उनकी कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी महाराज एक बार प्रवचन में कह रहे थे, आपको कृष्ण की भक्ति और प्रेम चाहिए तो चेतना महाप्रभु के पास जाओ, चेतना महाप्रभु की प्रेम और भक्ति चाहिए तो नित्यानंद के पास जाओ, और नित्यानंद की कृपा अगर आपको चाहिए तो सबसे गिरे हुए नीच लोगों के पास जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। जितने दीनहीन के पास जाके आप भगवान का प्रचार करोगे उतना नित्यानंद प्रसन्न होंगे, नित्यानंद प्रसन्न होगे तो चेतना महाप्रभु की कृपा मिलेगी, चेतना महाप्रभु की कृपा मिलेगी तो कृष्ण कृपा मिलेगी, ये फार्मूला है। तो यहां सब हम वैष्णव जनों को प्रणाम करते हैं, और वैष्णव जनों को प्रणाम के बाद फिर पंचतत्व प्रणाम करके हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण अपनी आत्म शुद्धि के लिए करते हैं कि अब ये शास्त्र हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमको समझ में आना चाहिए। अब में से जो पुराने हमेशा आते हैं उनको मालूम है, वरना पंच तत्व को भी जान लेना चाहिए। पहली बार इस मंत्र में मेरे ख्याल में 3 साल से तो अधिक हो गया, जब पहले मैं एक प्रवचन देने आया था तो हमने पंच, हाँ 5 साल हो गए, तीन में ऐसा, तब वो हमने पहले दिन पंच तत्व का ही दिखाया था कि इसे पहचान तो लो कौन सा कौन है। तो आप में से सब जो नहीं जानते हैं एक बार उसको सुनने में आपत्ति नहीं है, कहाँ है पंच तत्व, आपकी भगवत गीता में निकाली, यहाँ है लगे हुए, और आप अपनी भगवत गीता में भी देख लीजिए। पहला बीच में जो पंच तत्व में है उसका श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य बीच बीच में है, यह श्री कृष्ण चैतन्य, उनका पूरा नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, और महाप्रभु प्राय पर्यायवाची नाम महाप्रभु है, और उनके शरीर का रंग गोरा था इसलिए गौरंगा भी उसी को कहते हैं, उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ इसलिए निमाई भी उसको कहते हैं, निमाई गौरंगा श्री कृष्ण चैतन्य, केवल चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य भी कहते हैं, उनके गुरु जी का दिया हुआ नाम। तो ये बीच में जो श्री कृष्ण चैतन्य है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, इनके सीधे हाथ पे उनका पहला विस्तार बलराम जी जो इस वक्त नित्यानंद के रूप में है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद राइट साइड में है, आपके लेफ्ट में, मतलब आप जब देखेंगे मेरी राइट साइड में है, जब मैं मेरी राइट साइड में नित्यानंद प्रभु है, और उनको पहना हुआ पीला कपड़ा होता है प्राय, जो उनकी नीला पीला चैतन्य महाप्रभु, नीला ब्लू, और उनकी राइट साइड में दाढ़ी के साथ अद्वैत आचार्य हैं, अद्वैत आचार्य सॉरी वो, तो ये तीनों चेतन महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, ये तीनों विष्णु हैं, मतलब ये विष्णु तत्व हैं, ये तीनों भगवान हैं, कृष्ण बलराम और महाविष्णु, ये तीन एक ही तत्व है। एक ही तत्व का मतलब ये है कि तीनों सोना है, माना एक एक सोने का झुमका है तो एक कड़ा है, लेकिन तीनों है सोना, तो ये हो गई उनकी पहचान, तीनों तत्वों में विष्णु है। चेतना महाप्रभु के लेफ्ट साइड पे गदाधर पंडित है, ये विष्णु तत्व नहीं है, ये शक्ति है, और ये शक्ति भी अंतरंग शक्ति है भगवान की, राधा स्वरूप, राधा का तत्व उसमें है विशेष रूप से। तो भगवान की शक्ति भगवान के लेफ्ट साइड में होती है, लेफ्ट साइड में होती, और गदाधर के भी लेफ्ट साइड में श्रीवास, श्रीवास ठाकुर है। श्रीवास ठाकुर जीव तत्व है, भगवान का भक्त है, जैसे आप लोग सब भक्त हैं, ये जीव तत्व है, और जीव भी भगवान की शक्ति है। भगवद गीता में जीव को भी भगवान ने क्या कहा है, जीव भूताम महाबाहो, जीव जो है मेरी शक्ति है, पराशक्ति है। ये प्रकृति है, ये नीचे की शक्ति है, इससे ऊपर की शक्ति जीव है, तो जीव भगवान की शक्ति है, तो शक्ति भगवान के लेफ्ट साइड में होती है। तो श्रीवास क्या, कौन सी शक्ति है, जीव शक्ति। गदाधर कौन सी शक्ति है, अंतरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति भगवान की। और दो शक्तियां आ गई, बीच की एक शक्ति इसमें नहीं है, वो है बाहरंग शक्ति, नहीं है बाहरंगा शक्ति, वो प्रकृति है, वो इसमें नहीं है। इसलिए हम भगवान की शक्ति है, जीव हमें तो हम भगवान की शक्ति है, और शक्ति लेफ्ट साइड में होती है, इसलिए हमारा प्रणाम लेफ्ट साइड से होता है, हम भगवान को अपना उल्टे हाथ की तरफ रख के प्रणाम करते हैं, ऐसे इसका कारण ये है कि शक्ति भगवान के लेफ्ट साइड में होती है। देवी को, देवी देवता को, क्योंकि वो जीव तत्व है, इसलिए उनको प्रणाम राइट साइड से होता है, उनको लेफ्ट साइड से नहीं होता है। गुरुजनों को प्रणाम सीधा होता है, बिल्कुल सीधा होता है गुरु को प्रणाम। प्रभुपाद जी एक बार अपने भक्तों के साथ, कोई व्यक्ति उनको ले जा रहा था दुर्गा माता जी के मंदिर में, तो प्रभुपाद ने कहा आप सब मेरे पीछे आते हैं, जैसे मैं करता हूं ऐसे करना। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी दुर्गा जी के मंदिर में कोई लोग उनको ले जा रहे थे, कहीं प्रवचन देने गए थे, तो भक्तों को आप मेरे पीछे आना, जैसे मैं करूं वैसे आप करना। तो प्रभुपाद ने वहां सीधे हाथ की तरफ से प्रणाम किया, सब भक्तों ने सीधे किया। बाद में कहा क्योंकि ये शक्ति है, हम भी शक्ति हैं, तो इनको प्रणाम हमको इधर से करना चाहिए, विष्णु को लेफ्ट साइड से करना चाहिए और गुरुजन को सीधा करना चाहिए सामने से। प्राय हम सामने से इसलिए नहीं करते हैं, गुरुजनों को के सामने करते हैं तो भगवान की तरफ पांव हो जाते हैं, लेकिन भगवान को प्रणाम सामने से, पीछे से, राइट साइड से करने से सारे पुण्य क्षीण होते हैं, ऐसा शास्त्रों का उल्लेख है। केवल लेफ्ट साइड से करना चाहिए, और कहीं से भी करने से जो हमारे पुण्य है वो कम हो जाते हैं, पुण्य क्षीण होते हैं। तो ये पंच तत्व का आपको जब देखें तो उनकी उनकी पहचान होनी चाहिए। तो वो असल में उनको सिखाना चाहिए, उनको उनको सिखाना चाहिए, और वो सिर्फ इतना थोड़ा सा पीछे हट के इसलिए करना चाहिए, मानो आप प्रभुपाद है तो भाव आता है कि हमारा उस तरफ पांव नहीं होना चाहिए, थोड़ा पीछे हट के करना चाहिए, लेकिन करना लेफ्ट। यहां से जगर हम यहां से कर रहे हैं तो उस वक्त प्रभुपाद को केंद्रित करके, लक्षित करके यहां से करें, और भगवान को करना हो तो वहां से करना चाहिए। और एक दूसरी सावधानी ये भी, थोड़ा पीछे हटके लेकिन मन से कर देना अच्छा है। एक हमने वो बाहर कर ले, बाहर कर। और दूसरी चीज हमने विशेष रूप से देखी है वो ये है कि बड़े मंदिर में जहां अल्टर होते हैं, प्रणाम करते हुए भागा दौड़ी में प्रणाम ऐसे करते हैं कि भगवान के चरणों के ऊपर सर होना चाहिए, वो सर होता है मंदिर वो भगवान के बहुत आगे, और अब हमारे पांव होते हैं भगवान के पांव के पास, होना चाहिए हमारा माथा भगवान के चरणों में जब प्रणाम करे तो। लेकिन भागा दौड़ी में हम प्रणाम ऐसे करते हैं कि वो ठाकुर जी से बहुत आगे निकल के हमारे पांव भगवान के सामने होते, तो ये भी एक छोटी बातें होनी, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सावधानी करनी चाहिए। तो प्रणाम मानो जगह नहीं है तो रुक जाना चाहिए अथवा बाहर जाके करना चाहिए, लेकिन भाव ठीक नमूने सही नमूने प्रणाम करना चाहिए, समझ के प्रणाम करना चाहिए। ये रोज की क्रिया है, उसको समझ के करना चाहिए प्रणाम। तो इसके बाद प्रभुपाद जी गीता का ये जो शुरू करते हैं भूमिका, उसमें पहला शब्द कहते हैं ये गीता उपनिषद है। ये गीता क्या है? गीता उपनिषद, इसको गीत उपनिषद कहते हैं। उपनिषद हमारे वेदों के वो अंग हैं जिनमें वेदों की शिक्षा को समझाया गया है, और 108 से अधिक उपनिषद है, उसमें से 8 तो विशेष रूप से बहुत बड़े महत्वपूर्ण उपनिषद है, उनके नाम भी आना चाहिए। उसमें से कुछ उपनिषद प्रभुपाद ने भगवद गीता में जगह जगह पे उद्धृत किए, और कठ उपनिषद विशेष रूप से आपको मिलेगा, ईशावास्य उपनिषद मिलेगा, श्वेत क्या है श्वेत उपनिषद है उसका कोट किया हुआ है। तो कुछ उपनिषद है वो तो हमको उनके नाम भी आने चाहिए। और उपनिषद का अर्थ है उप, जिसका हम अगर सेवन करें समझें तो हमको वो ऊपर उठा के भगवान के पास बिठा देगा। जिसकी शिक्षा से आप नीचे के स्तर से उठकर ऊपर के स्तर के पहुंच जाओ, उस ज्ञान को उपनिषद का ज्ञान कहते हैं। तो गीता उपनिषद है, पहली बात तो ये है। इसका अर्थ ये हुआ कि गीता वेदों के अंतर्गत आती है, उपनिषद वेदों के साथ जाना जाता है। इसको श्रुति कहते हैं, उपनिषद को श्रुति कहते हैं। श्रुति का मतलब सुनने के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाए, और वेद और उपनिषद श्रुति में आते हैं, और पुराण इतिहास आदि आते हैं स्मृति में। स्मृति का मतलब लिखा लिखी पढ़ी लिखने के बाद समझ में आने वाली चीज। तो इसलिए महाभारत इतिहास है, लेकिन उसको पांचवा वेद इसलिए मानते हैं कि उसके अंदर गीता है। ठीक है, लेकिन यहां जब उपनिषद इसको कहते हैं तो उसका भाव कहने का ये कि प्राय लोग कहते हैं श्रुति शास्त्र को हम पढ़ना चाहते हैं, स्मृति नहीं पढ़नी है। तो इसलिए प्रभुपाद ने शुरू यहां से किया है, ये श्रुति है, ये उपनिषद है, ये वेदों का इस भाग है। और पंचम वेद महाभारत को पंचम वेद माना गया, वो पंचम वेद महाभारत को यूं इसलिए माना गया कि उसके अंदर भगवद गीता है जो उपनिषद है। तो ये पहला शब्द गीता उपनिषद है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि गीता श्रुति शास्त्र है, सब उपनिषदों का इसके अंदर सार है। इसलिए गीता के महात्म्य जो आपके इस भूमिका के अंतिम पृष्ठ के ऊपर आएगा, उसमें 7 श्लोक हैं गीता महात्म्य के। अब लास्ट पेज भूमिका का देखिए, उसमें 7 श्लोक गीता महात्म्य के हैं। उन 7 श्लोकों में सिर्फ पहले श्लोक की आधी लाइन नहीं दी गई है, बाकी 6 श्लोक पूरे हैं। पहले श्लोक में 1/4 टुकड़ा कम है। लास्ट पेज में आप देखिए एकम शास्त्रम से आगे, ये तो लास्ट है, 7वां है। इससे पहले श्लोक में 1/4 नहीं है सिर्फ। उसका नाम है, उस श्लोक में पहला शब्द है गीता शास्त्रम इदम ये पठे, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम ये पठे प्रियत पुमान। ये 2 लाइन है, देखो मिला कहीं के नहीं मिला ना, ये इससे आगे इससे ऊपर गीता शास्त्रम इदम ये पठे प्रियत पुमान। मिल गया कि नहीं मिला? मिलेगा मिलेगा, मिला कि नहीं? पेज बताओ सबको, पेज बताओ सबको। 30 हाँ 25 की लास्ट पैरा में, हाँ लास्ट पैरा में नीचे मिला गीता शास्त्रम इदम, ये गीता शास्त्र पुण्यम, ये बहुत पुण्य है। हाँ क्या नहीं है, क्या कह रहे? अरे इससे आगे जाओ ना, ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ मेरे मां, है मुझे मालूम है, मुझे तो मालूम है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप ढूंढिए गीता शास्त्र में एकदम पुण्यम, ये पटे प्रियत पूरा श्लोक नहीं है लेकिन है तो मुझे मालूम है कैसे लिखा है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इतना मिल गया आप, इसका एक टुकड़ा नहीं है वो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एक टुकड़ा किसी कारण से नहीं आया। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम ये पठे प्रियत पुमान, इतना है ना। फिर लास्ट में देखो लिखा है भय शोकादि वर्जित, वो भी है ना। ये तीन टुकड़े हैं, सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है इसमें, तीन नंबर का नहीं है, एक है दो है तीन नहीं है चार है, और उस चार का अर्थ जरूर लिखा हुआ है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठे प्रियत पुमान विष्णु पदम वापनोति, एक ये दो शब्द नहीं है, विष्णु पदम वापनोति, भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करेगा, जिसका अर्थ प्रभुपद ने लिखा है स्पिरिचुअल लाइफ उसको मिलेगी। तो एक शब्द सिर्फ विष्णु पाद क्या, गीता शास्त्र में ये पठे प्रियत पुमान विष्णु पदम वापनोति भय शोकादि वर्जित, विष्णु पदम वापनोति एक शब्द सिर्फ नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए याद बता रहे हैं कि जब आप अभी इसको ठीक तरह पढ़ेंगे तो एक श्लोक का ये टुकड़ा आना चाहिए। ये बताने का मेरा अर्थ ये था कि इसमें छठा नंबर श्लोक है लास्ट पेज पे, सर्व उपनिषदो गावो, देख लो ये गीता उपनिषद जहां प्रभुपाद ने कहा है उसको सिद्ध करने के लिए ये श्लोक है कि सर्व उपनिषदों गावो, अगर सारे उपनिषद जितने भी शास्त्र हैं वेद के अंग वो अगर गाय बन जाएं, तो गाय में मुख्य चीज क्या होती है, दूध, और दोग और दुहने दूध निकालना भी किसी को आना चाहिए ना, तो दोगदा गोपाल नंदना, तो अगर सारे शास्त्र रूपी उपनिषद गाय बन जाएं तो गोपाल नंदन श्री कृष्ण गाय से दूध निकालने में बहुत प्रवीण है, बहुत ही होशियार है, उसने उस दूध को निकाला, सब शास्त्रों का सब उपनिषदों का सार निकाला, दुहा किसको दिया, पार्थो वत्स, वत्स कहते हैं बछड़े को, वो सारा दूध पार्थ मतलब अर्जुन को उन्होंने पिलाया। सुधीर भोक्ता, और जो भी बहुत धीरजवान है वो इस दूध को अभी भी पी सकते हैं। दुग्धम दूध गीता अमृतम महत, इस महान गीता के अमृत को जो सुधीर व्यक्ति है, जो धीरजवान है, जो सोबर है, वो आज भी उसी दूध को पी सकते हैं। तो ये दूध क्या है, सारे उपनिषदों का सार, सारे उपनिषदों का सार है, इसलिए गीता उपनिषद इसलिए कहते हैं क्योंकि गीता के श्लोक सारे उपनिषदों के अंदर मिलते हैं ऐसे ही श्लोक, इसलिए आचार्यों ने विद्वानों ने भारत के अंदर ऋषियों ने गीता को सारे उपनिषदों का सार माना है, इसलिए इसको गीता उपनिषद कहते हैं। तो ये एक बात ठीक तरह समझ में आनी चाहिए कि वेद और गीता में कोई अर्थ नहीं है, सब वेदों का सार है गीता। इसलिए कभी लोग कहते हैं आप वेद नहीं पढ़ते हो, हम वेदों का सार पढ़ते हैं, वेदों का सार इसलिए पढ़ते हैं, कल जो हमारे पास समय नहीं है सब चीजों को समझने का, तो ये उनका सार बहुत सरल भाषा में भगवान ने समझाया, तो उसको समझना और उसके ऊपर अध्ययन करना थोड़ा सरल है। तो पहली बात यह कि गीता वेद है, और फिर एक और महात्म्य में विशेष बात दूसरी देखिए, गीता सुगीता किमनई शास्त्र विस्त्रई, एक और गीता महात्म्य का श्लोक है इसको देख लीजिए, गीता सुगीता मिल गया, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य ही शास्त्र विस्तर, एक गीता को समझ लीजिए तो और सब शास्त्रों को समझने की जरूरत ही क्या है। या स्वयं पदम नाभस्य, क्योंकि ये भगवान के मुख से निकला है, तो भगवान जैसे वेद भगवान के मुख से निकला है, भगवान वेद कहां से निकला है, बोला भगवान के मुख से निकला है, और ये गीता भगवान से मुख से निकली, तो भगवान के मुख से निकला हुआ ये शास्त्र है, तो और किसी शास्त्र की जरूरत ही क्या है। ऐसे भी लिखा है कहीं कि जो सब शास्त्रों में है वो तो गीता में है ही, लेकिन जो और कहीं नहीं मिलेगा वो भी गीता में है। जो सब शास्त्रों में सब धर्मों के अंदर आपको सिद्धांत मिलेंगे वो गीता में है सब, लेकिन जो और कहीं नहीं है वो भी गीता में है। इसलिए एक गीता पढ़ने से सब शास्त्रों का सार आ जाता है। तो एक शब्द सिर्फ प्रभुपाद लिखा है गीता उपनिषद, उसको इस दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि सब सब उपनिषदों का सार है, गीता श्रुति है, गीता वेद है। और विशेषता क्या है गीता की, विशेषता यह है कि वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, हर एक आदमी वेद नहीं पढ़ सकता, लेकिन गीता पढ़ने का अधिकार सबको है, यह गीता की विशेषता है। वेद हर एक नहीं पढ़ सकता था, इसलिए व्यासदेव स्वयं कहते हैं कि मैंने कलयुग आता हुआ देखते हुए वैश्य शूद्र स्त्री द्विज बंधुओं के समझने के लिए महाभारत की रचना की है, जिसके अंतर्गत गीता है, जिसको मैंने पढ़ने का सबको अधिकार दिया है, नहीं तो केवल ब्राह्मण वेद को पढ़ने का अधिकार हुआ करता था। तो ये बहुत बड़ी विशेषता भगवद गीता की है कि वही वेदों का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने सबको, कृष्ण ने सबको सरलता से किसी भी वर्ण में किसी भी आश्रम में, इसलिए भगवान ने उदाहरण क्या दिया, गीता सिखाने के लिए किसी सन्यासी को नहीं बुलाया, किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया, गृहस्थ को और क्षत्रिय को बुलाया, अर्जुन को। तो गीता किसी ब्राह्मण को नहीं पढ़ाई गई, गीता किसी सन्यासी वृक्त महात्मा को नहीं पढ़ाई गई, गीता एक कर्मठ कर्तव्य पालन करने वाले भगवान के निज भक्त को, जो ग्रस्त भी था और जो क्षत्रिय था, उसको दी गई अर्जुन को। तो ये बात सिद्ध करती है कि गीता वेद होते हुए भी गृहस्थी को वृक्त को सबको पढ़ने का अधिकार है। ये बहुत सावधानी से समझना चाहिए कि एक शब्द प्रभुपाद ने गीता उपनिषद लिखा है तो उसके पीछे कितना बड़ा रहस्य है कि ये शास्त्र वेद होते हुए भी सबको पढ़ने का अधिकार है। तो गीता कोई और पढ़ेगा तो किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन वेद कोई और पढ़ेगा तो ब्राह्मण कहेगा तुमको अधिकार नहीं, तुम कैसे वेद पढ़ते हो। इसलिए ज्ञान आदि योग जो है केवल ब्राह्मण ही किया करते थे, क्योंकि ज्ञान वेद में है, वेद पढ़ोगे तो ज्ञान योग होगा, लेकिन भक्ति भक्ति कोई चंडाल भी कर सकता है, नीच से नीच व्यक्ति भी। और भगवत गीता में विशेष रूप से भक्ति का शास्त्र है, जो विशेष रूप से भगवत गीता दी गई है वो किसको दी गई है, आप इसी भावार्थ के जो आपने भूमिका को हमने जहां शुरू किया है उसके भूमिका के दूसरे पेज को सिर्फ पलट के देखेंगे, दूसरे पेज के ऊपर, दूसरे पेज के ऊपर तीन श्लोक दिए हुए देखा, दूसरे भूमिका के दूसरे पेज पे, दूसरे पृष्ठ पे तीन श्लोक हैं। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम् अव्ययम् विवस्वान मन्वे प्राहु मनुरिक्ष्वाक्वे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम राजऋष्यो विदो सकाले नेहमाता योगो नष्ट परंतप स एवायम मयाते अद्य योग प्रोक्त पुदातन भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम है तदुत्तम। प्रभुपाद ने एकदम ये तीन श्लोक भगवद गीता से दे के कहा भगवद गीता समझने के लिए केवल भक्त ही अधिकारी है, उसका भक्त होना आवश्यक है, किसी वर्ण का हो जरूरी नहीं है, किसी आश्रम का हो जरूरी नहीं है, लेकिन उसको भक्त होना चाहिए। इसलिए एक ही लाइन प्रभुपाद ने लिखा है, इस तीनों श्लोकों का एक ही अर्थ है कि गीता समझने का अधिकारी वो हो सकता है जो भक्त है। और भगवान ने कहा है कि आप मेरे भक्त बनो, और यहां कहते हैं क्योंकि अर्जुन तुम्हारे मेरे भक्त हो इसलिए मैंने तुमको गीता सिखाने का भार उठाया है, मैं तुमको सिखा रहा हूं। तो ये बातें उपनिषद होते हुए भी गीता भक्त अगर कोई भक्ति के भाव से सीखना चाहेगा तो वो किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का, किसी भी देश का, किसी भी स्त्री है पुरुष है कोई भी इसका अध्ययन कर सकता है। वेदों का अध्ययन तो स्त्रियों को करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। तो ये गीता की विशेषता है, इसलिए उपनिषद होते हुए भी गीता आप सबको पढ़ने का अधिकार। तो 8:26 हुए हैं, 4 मिनट आपको कोई प्रश्न पूछे। हम सिर्फ उपनिषद शब्द के ऊपर ही आज चर्चा करने का प्रयास किया कि प्रभुपाद ने इसको गीता उपनिषद क्यों लिखा है, और पीछे उपनिषदों का सार है गीता। ये गीता महात्म्य, वैसे रामानुज आचार्य की महात्म्य के श्लोक है, कभी कभी शंकर आचार्य के इन श्लोकों को माना जाता है गीता महात्म्य की ये 7 श्लोक। कहाँ गीता महात्म्य ने नाम दिया? गीता महात्म्य का मतलब गीता की महिमा। पद्म पुराण के अंदर बहुत से श्लोकों में गीता की महिमा है, जिनमें गीता पढ़ने का क्या लाभ है, गीता कैसी है, उसको कहते हैं गीता महात्म्य। गीता का महात्म, महा मतलब बड़ा, गीता की बड़ाई क्या है। तो यहां ये 7 श्लोक हमारे रामानुज आचार्य की ये 7 श्लोक हैं। वैसे शंकर आचार्य के भी कहीं लिखा हुआ कहते हैं इनको, ये गीता की महिमा में 7 श्लोक कहे गए हैं। 7 श्लोक हैं गीता महात्म्य के, हैं ग्रंथ नहीं, 7 श्लोक हैं। ये गीता के महात्म्य किसी ने, जैसे मेरे जैसे किसी भाई प्रभुपाद जी को महात्म बताना है तो प्रभुपाद जी महात्म्य कोई 5-7 श्लोक कहते हैं, ये महाराज कलकत्ते में जन्म हुआ 70। शास्त्र नहीं, शास्त्रों के अंदर एक अध्याय होता है। जैसे गीता का महात्म्य पद्म पुराण के अंदर एक जी, वो महात्म और चीज है। नहीं नहीं नहीं, वो महात्म और चीज है, ये महात्म्य और चीज है, ये श्लोक है कुछ। उसको क्या कहते हैं, वो पद्म पुराण से है। गीता के एक अध्याय के अध्ययन का क्या लाभ है? ये असल में पुराणों की ये शैली रहती है कि 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक ज्ञान को कहते हैं रोचक ज्ञान। रोचक का मतलब आपकी रुचि पैदा करने के लिए आपको कुछ प्रलोभन दिया जाएगा। प्रलोभन क्या दिया जाएगा, ये आप अगर अध्ययन करोगे तो आपके घर में सुख शांति हो जाएगी, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, आपका रोग नाश हो जाएगा। इसको बोलते हैं रोचक ज्ञान। एक होता है भवायक ज्ञान। भवायक, आप ये नहीं करोगे, आप इसका तिरस्कार कर दोगे तो आपको दंड मिलेगा, आपका एक्सीडेंट होगा, आप नरक में जाएंगे, इसको भवायक ज्ञान बोलते हैं। तीसरा होता है यथारूप ज्ञान। यथारूप ज्ञान, जैसा असली चीज है उसको वैसे का वैसे बताना। तो प्रभुपाद ने भगवत गीता को यथारूप में लिखने का प्रयास किया है कि भगवत गीता में जो है उसको सुनो। तो गीता का रोचक ज्ञान भी है, जो गीता के महात्म्य पद्म पुराण से है वो भी सच है, लेकिन वो है काय के लिए, गीता में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, ताकि गीता को अध्ययन करें, क्योंकि इससे ये लाभ होते हैं। वो भी तर गया गीता पढ़ने से, ये अध्याय से, ये उत्तम। तो इसको कहते हैं कर्म कांड की दृष्टि से गीता का अध्ययन करना। तो ये वो गीता के महात्म मतलब गीता का क्या फल होगा पढ़ने का। लेकिन महात्म्य के श्लोक सिर्फ कुछ, इसमें 7 श्लोक, हाँ इसमें 7 गीता महात्म्य के श्लोक हैं। एक और गीता महात्म्य, एक महात्म्य श्लोकों में और है, उसमें लिखा गीता का एक श्लोक नहीं कर, पूरा पाठ करे पूरा नहीं करे, एक अध्याय नहीं करे तो एक श्लोक करे, एक श्लोक नहीं करे तो एक लाइन करे तो एक अक्षर करे तो भी इतना फल मिलता है। वो पूरा लंबा चौड़ा महात्म है गीता का। ऐसे भागवत का महात्म है। ये दोनों किताब इस्कान में छपे हुए हैं। गीता महात्म में भी छोटा छपा हुआ है, भागवत महात्म में भी छपा हुआ है। भागवत महात्म 5-6 अध्यायों में, और 2 जगह पे गीता भागवत महात्म है। 2 पुराणों से भागवत महात्म्य है। एक तो भागवत का महात्म्य ये है कि जो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को नारद जी ने भागवत सुना के, और गोकर्ण की कथा उसमें आती है, गोकर्ण और धुंधकारी की। और दूसरा महात्म्य गीता का और भागवत का है कि भागवत का पाठ करना कैसे चाहिए, सुनने वाले कैसे होते हैं, अच्छे सुनने वाले चार प्रकार के कौन से हैं, और नीच कोटि के सुनने वाले चार प्रकार के कौन से होते हैं, उनमें नाम लिख के पूरा वो स्कंद पुराण से है, किस महात्म्य पांच अध्यायों में वो बड़ा रोचक है, कभी पढ़ना चाहिए। उसमें कैसे भागवत को पढ़ी जाती है, 7 दिन का बड़ा आयोजन करके बहुत बड़ा पंडाल बना के, तो ये रजोगुण का आयोजन है, इसमें लिखा ये रजोगुण का आयोजन है। 1 महीने तक पाठ करे, जैसे विष्णु करता है, भगवान विष्णु करते हैं, वो सत्वगुण का है। 2 महीने तक भागवत का पाठ लक्ष्मी जी करती है, शंकर जी 1 महीने तक करते हैं, तो उनके उनकी विधि विधान के अनुसार कौन सत्वगुण का है, कौन रजोगुण का है, कौन तमोगुण का पाठ है, बहुत बड़ा विवरण है। तो उसको महात्म्य बोलते हैं। ये वैष्णव करते नहीं है, लेकिन मालूम तो होना चाहिए क्या हो रहा है, मालूम तो होना चाहिए ना कि है कोई चीज। वैष्णव रोज भागवत नित्यम भागवत सेवा करते हैं, रोज भागवत का सेवन होता है। वैसे वैष्णव लोग भी पाक्षिक का मतलब कार्तिक महीने में पूरी भागवत का अध्ययन करते हैं, बैठ के पढ़ें, पूरी भागवत पढ़ लेंगे, तो करना चाहिए। ऐसा नहीं है, नहीं करते का मतलब ये नहीं कि एक श्लोक पढ़ने के लिए पूरा काम उससे हमारा हो गया, ये ऐसा नहीं है। कई वैष्णव ये व्रत लेते हैं कि मैं इस कार्तिक के अंदर भागवत पढ़ के पूरी करूंगा, तो ऐसे व्रत लेके 3-4 घंटे रोज पढ़ना चाहिए कि हमको एक बार कभी पढ़ना चाहिए ना, तो ठीक तरह से उसका अध्ययन करना चाहिए। ऐसे गीता के लिए भी कभी संकल्प लेना चाहिए कि मैं अध्याय 1 रोज पाठ करूंगी तो 18 दिन में पूरा हो जाएगा। अथवा ऐसे करना चाहिए कि 15-15 दिन में एकादशी तक हम एक एकादशी को शुरू करेंगे, दूसरी एकादशी तक हम एक गीता का पूरा पाठ कर लेंगे। तो ऐसा कभी नियम बनाना चाहिए, ये अपनी साधना में होना चाहिए। पहले श्लोकों का मूल पाठ करना, फिर उसके अर्थ को साथ में समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये ऐसा कुछ नियम जीवन में लेना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। केवल एक स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उससे बच्चे कभी पास थोड़ी होते हैं, घर में जाके मेहनत करेंगे तब काम चलेगा ना। तो यहां 1 हफ्ते में 1 दिन आते हैं, 1 घंटा आपको भगवद गीता की समझाया जाता है, उससे काम तो नहीं चलेगा पूरा। आपको स्वयं बैठ के कुछ संकल्प लेके प्रतिदिन कुछ करना चाहिए इसका। हरे कृष्ण। महात्म इसलिए होता है उसकी महिमा बताने के लिए, उसकी बड़ाई बताने के लिए होता है। हरे कृष्ण। आज का दिन का प्रसाद किसका है, जिसको हमने कहा था हम आएंगे, वो किसका है? श्याम गोविंद प्रभु जी की ओर से प्रसाद, और माता जी साथ में आई, क्या नाम? वो आपने लाल कपड़े पहने, वो क्यों आएंगी फिर? इन्होंने कपड़े पहने, माता जी बोला ठीक है ये लेने ले, मैं लेती हूँ सन्यास जा रही हूँ वृंदावन। तो श्याम गोविंद प्रभु जी कार्तिक में बहुत अच्छा सेवा किया, धन्यवाद उनका। और हरे कृष्ण। लाल कपड़े वो तो स्वयं बताए उठ के, एक ड्रामे में उन्होंने पार्ट लिया था प्रभुपाद का, तब सन्यासी बन के डंडा उठा के लाल कपड़े पहने होंगे, तो इनकी पत्नी ने देखा तो वो चली गई वृंदावन, बोला अब ये सन्यासी हो गए, हम जा रहे हैं वृंदावन। अरे कृष्णा हो गया काम लेना, अब लेने अब ये उन्होंने कहा आपने कपड़े बदले क्यों, आप ठीक लग रहे थे। चिंता हो गई क्या? गौर किशोरदास बाबा जी का